शांति। बाबा के सभी बच्चे विशेष करके समाज सेवा में लगे हुए सेवाधारी बच्चों का संगठन, बाबा भी आप सबको देख के कितना प्रसन्न हो रहा होगा। इतने सब समाज की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और ऐसे दिनों में आए हैं जब चारों ओर बहुत सुंदर हरा भरा वातावरण है, प्रकृति अपना सुंदर हरियाली का रूप दिखा रही है। बाबा ने हम सबको हमारी सुरक्षा के लिए मर्यादाओं का कवच, मर्यादाओं का बंधन दिया है। इस ब्राह्मण जीवन में जितना हम सब मर्यादाओं को, ईश्वरीय नियमों को दृढ़ता से पालन करते हैं, उतना इस मायावी दुनिया में पांचों विकारों से, प्रकृति के पांचों तमोगुणों रूप से हम सुरक्षित रहते हैं। वर्तमान समय वैसे तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका कोई दुश्मन नहीं है, केवल विकार ही आपके दुश्मन हैं, बुराइयां ही आपके दुश्मन हैं, इन पर ही तुम्हें जीत प्राप्त करनी है और उसके लिए मर्यादाएं आपकी रक्षा कवच बनती हैं। ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को अगर दृढ़ता के साथ पालन किया है तो वो इस मार्ग में बहुत सुरक्षित हैं। इसी की यादगार में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर स्वयं बाबा ने हम बच्चों को रक्षा सूत्र बांध दिया। राखी बंधन कहलाता है, लेकिन बंधन अनेक बंधनों से मुक्त कर देती है। तो आप सबने इस ब्राह्मण जीवन में इन मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करने का संकल्प तो किया ही होगा, चल रहे हैं, योगी जीवन जी रहे हैं। बाबा ने अपने बच्चों को आज कितना योग का और चार्ट का यथार्थ अर्थ बताया है। एक ही बाबा की मुरली अगर कोई ब्राह्मण आत्माएं बहुत ध्यान से, अटेंशन से सुन ले तो बहुत सहज पुरुषार्थ की विधियां बाबा हमें बता दें। तो यथार्थ चार्ट जो चार्ट रखते हैं अपनी स्थिति का, अपने योग का, उसकी निशानी बाबा ने बताई कि इस जीवन के अंदर प्रगति और परिवर्तन। अगर हमारी प्रगति नहीं हो रही और हम रोज चार्ट रखें क्या फायदा, और संस्कारों में अगर परिवर्तन दिखाई नहीं देता तो भी चार्ट रखने का कोई फायदा नहीं। इसलिए बाबा ने यथार्थ याद किसको कहा जाता है उसकी दो बातें सुनाई कि बच्चे योग एक अग्नि है, अग्नि में संस्कारों का परिवर्तन होता है। स्वयं में संस्कारों में जब परिवर्तन दिखाई देता है, साथ साथ जितना हल्कापन है, खुशी है, वो यथार्थ योगी जीवन की निशानी है। तीनों सर्टिफिकेट यथार्थ चार्ट है तो स्वयं से आत्मा संतुष्ट रहेगी। यथार्थ योग है तो बाबा हमसे संतुष्ट रहेगा। अगर उसकी आज्ञा के अनुसार, श्रीमत अनुसार हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग यथार्थ है तो बाबा खुश है, संतुष्ट है। और अगर हमारी ये योगी जीवन है तो हमारा ब्राह्मण परिवार भी हमसे अवश्य संतुष्ट रहेगा। तो ऐसी बाबा की जब मुरलियां हम सब सुनते हैं तो जरूर अपनी चेकिंग होती ही है कि कहाँ तक हमने ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं इस ब्राह्मण जीवन में, और इन सब सर्टिफिकेट्स को, इस प्राइज को लेने के लिए बाबा कहता है जिस बच्चे ने जितना ईश्वरीय नियमों को, मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन किया है उसकी जीवन ही योगी जीवन बन जाती है। हम सबको बाबा ने पहले नियम बताए, वो दिनचर्या के नियम जो हैं, एक है अपने खान पान के, अपने व्यवहारिक जीवन की दैनिक दिनचर्या के नियम, ईश्वरीय नियम, मर्यादाएं, श्रीमत, अगर हम यथार्थ समझ करके चलते हैं तो ये जीवन बहुत सहज खुशनुमा जीवन है, और अगर हम समझ नहीं पाते हैं, उनको हम पालन नहीं करते हैं, तो ये भी एक बोझ वाले जीवन, भारीपन का अनुभव कराती है। इसलिए सभी अमृत वेले से रात्रि तक की दिनचर्या जो हमारी उन्नति के लिए बनी हुई है उस पर जरूर हम सबको अटेंशन देना है। बाबा के बच्चे अगर अमृत वेले नहीं उठते हैं, बाबा से शक्ति सकाश नहीं लेते हैं, तो संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए ये वरदानी समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, बाबा ने हम सबके लिए एक बहुत सुंदर अपॉइंटमेंट का समय दिया है, और इसको हम ऐसे ही साधारण रूप में नहीं, नियम पालन किया, उठ गए, लेकिन उठने के बाद किस विधि से बाबा को याद किया, कैसे बाबा से शक्तियां प्राप्त की, वरदान लिए, उनसे मिलन मनाया, रू रिहान की, विधि पूर्वक अगर करते हैं तो सर्व शक्तियां अपने आप जमा होती जाती हैं, वरदाता का वरदान मिल जाता है। फिर ईश्वरीय महावाक्य अगर हम विधि पूर्वक, नियम पूर्वक सुनते हैं, उन पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनको स्वरूप में लाने का अभ्यास करते हैं, तो सहज योगी जीवन बन जाती है। फिर साथ साथ हमारा खान पान, रहन सहन, व्यवहार, संग, उस पर जिसका टेंशन है उसकी जीवन योगी जीवन बन जाती है। तो मैं समझता हूँ ये जो मूल नियम है ब्राह्मण जीवन के, सब बाबा के बच्चे विधिवत यथार्थ पालन करते हैं तब तो बाबा ने मधुबन आने का चांस दिया है। मधुबन में वही बाबा के बच्चे आते हैं, और विशेष बाबा मिलन में या योग तपस्या की भट्टियों में भी हमारी बहनें इन नियमों पर बहुत ध्यान खिंचवाती हैं। अगर आप शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं करते हैं, अमृत वेले योग नहीं करते हैं, संग पर आपका ध्यान नहीं है, रोज सत्संग के रूप में बाबा के महावाक्य नहीं सुनते हैं, तो मधुबन में आके क्या करेंगे, क्या अनुभव कर पाएंगे। मधुबन तपस्या भूमि है, मधुबन प्रभु मिलन की, अव्यक्त मिलन की भूमि है। यहाँ पर आकर के उसके अच्छे अनुभव करने के लिए हम सबको इस ब्राह्मण जीवन में इन नियमों को, इन मर्यादाओं को बहुत दृढ़ता के साथ पालन करना है। कहते हैं धरत परिये धर्म न छोड़िए, जान जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। इसके लिए इन मर्यादाओं पर दृढ़ता से चलने के लिए कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब इस कलयुगी दुनिया के अंदर कोई संकल्प करता है कि मुझे करना है, तो श्रेष्ठ संकल्प के आगे कई विघ्न आते हैं, कई रुकावटें आती हैं। कलयुग की दिशा अलग है, तमोगुणी वातावरण है, हर मानव आत्मा इन विकारों के, बुराइयों के अधीन है, और उसमें हम सब कोई नया रास्ता लेते हैं, नई जीवन बनाने के लिए नए नियम अपनाते हैं, तो उनका विरोध होता है, सामना करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। अगर उसमें हम पास हो जाते हैं तो हमारी जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाती है। इसलिए बाबा ने हम सबको कुछ मुख्य नियम बताए हैं, जो आज हम आपके पास रख रहे हैं सामने, बाबा के बताए हुए नियमों पर अगर हम दृढ़ता के साथ चलते हैं तो चेक करना कितना चल रहे हैं। बाबा ने कहा ना, कभी कभी वाले नहीं चाहिए, कभी बहुत हाई प्रेशर हो जाए और कभी एकदम लो हो जाए। तो आज बाबा ने बीपी भी चेक कर ली सबकी। तो देखना हमारे पुरुषार्थ का लेवल कभी कभी बहुत ऊंचा, बहुत उमंग उत्साह, और कभी एकदम निराशा वाला, दिल शिकस्त वाला, ऐसा तो नहीं होता है। तो पुरुषार्थ हमारा सदा उन्नति को और आगे से आगे बढ़ता रहे, उसके लिए सबसे पहले बाबा ने हमारी स्मृतियों के लिए मर्यादाएं दी हैं। जो कुछ स्मृतियों में बहुत कुछ भरा हुआ है पास्ट का, इस जीवन में भी कई ऐसे संग मिले हैं, कई ऐसे वातावरण में हमारी पालना हुई है, उनके कारण हमारे संस्कार बन गए और वो संस्कार स्मृतियों के रूप में अंदर ही जैसे प्रिंट हो गए हैं। बाबा के बच्चे बनने के बाद, मरजीवा जीवन लेने के बाद, सबसे पहले स्मृति के लिए मर्यादा है, बच्चे जो कुछ बीत गया उसको बार बार सुमिरन में नहीं लाओ, स्मृति में नहीं लाओ, उसको बिंदी लगा दो। बीती को चितवो नहीं, बीत गई चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सब देह मान में थे, अपनी पहचान ही नहीं थी, बाबा की पहचान नहीं थी, आत्मा शक्तिहीन थी, इसलिए कई भी कर्म इस देह मान के कारण कर्मेंद्रियों से हुए हैं। लेकिन उन विकर्मों के कारण, उन पाप कर्मों के कारण हमारी जो स्मृतियां पक्की हो गई, उनके आधार से संस्कार बन गए, बाबा के बच्चे बनने के बाद, ये अडॉप्टेड ब्राह्मण जन्म मिलने के बाद, भले इसी जन्म में कुछ गलतियां हुई हों, देहमान के अधीन होकर के कोई कर्म किए हों, बाबा कहते बच्चे भूल जा, उनको बार बार स्मृति में लाओगे तो एक श्रेष्ठ स्मृति बाबा की स्मृति नहीं रहेगी, इसलिए जो कुछ बीता है उसको बार बार सुमिरण में नहीं लाना, स्मृति में नहीं लाना, उसको बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। एक की स्मृति सदा बनी रहे, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, आत्मा स्मृति स्वरूप बन जाए, उसके लिए देह मन से जो भी कर्म हुए हैं, विकर्म हुए हैं, पाप कर्म हुए हैं, उन स्मृतियों को रिवाइज नहीं करना, उनको बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप करो। फिर बाबा स्मृति के साथ हमारी वृत्ति के लिए भी बहुत सुंदर मर्यादाएं सिखाते हैं, क्योंकि एक है संकल्प, जो हमारे संकल्प चलते हैं उस पर ध्यान भी रहता है कि ब्राह्मण जीवन में ये संकल्प राइट नहीं है, ये साधारण संकल्प है, ये नेगेटिव संकल्प है, ये व्यर्थ संकल्प है, बहुत सारी संकल्पों की वैरायटी है और कितने प्रकार के संकल्प कैसे कैसे चलते हैं वो हर एक जानता है, समझता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों के लिए सबसे अच्छी सेफ्टी का एक साधन दिया है, वो है शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करना। अगर हम संकल्पों की इस मर्यादा को यथार्थ समझते हैं, क्योंकि इस समय की बाबा की मुरलियां जो अव्यक्त बाबा की चली हैं, उसमें विशेष ध्यान व्यर्थ ही अपवित्रता है, इस व्यर्थ को समाप्त करो, व्यर्थ संकल्पों में इस संगम का ये सुहावना समय, संकल्प की शक्ति व्यर्थ न चली जाए, इसको बचाओ, ये श्रीमत है। और इस श्रीमत प्रमाण जो इस मर्यादा की बाउंड्री में रहते हैं, मर्यादा एक बहुत अच्छी रेखा जिसको शास्त्रों में कहते हैं लक्ष्मण रेखा, मन को जो बाबा ने लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य के अंदर ही मन रहे, उस रेखा का उल्लंघन न हो। संकल्प के लिए रेखा है बच्चे सदा शुभ सोचो, श्रेष्ठ सोचो, अच्छे अच्छे संकल्प करो, संकल्प आपके लिए बहुत अच्छा सुरक्षा कवच बन जाएंगे, ये घेरा बन जाएगा। जो हम कहते हैं कि देवताओं के या धर्मात्माओं के चारों ओर एक लाइट का क्राउन होता है, वो लाइट का क्राउन निर्माण कैसे होता है, तो हमारे शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों से निर्माण होता है। जो आत्मा बहुत समय तक बहुत पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करती है, उसके चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का घेरा, लाइट का क्राउन तैयार हो जाता है। तो संकल्पों के लिए बाबा ने हम सबको इस समय मर्यादा बताई है बच्चे, व्यर्थ देखना, सुनना, सोचना, इन संकल्पों को इधर उधर व्यर्थ की बातों में लगाना, इसको स्टॉप करो। जो तुम्हारे काम के संकल्प हैं, जिससे तुम्हारी प्रगति है, उन्नति है, वही संकल्प चलने चाहिए। अब उसके लिए आत्मा मालिक है, मालिक मन को जिस तरह से आर्डर करे उसी अनुसार वो संकल्प चलाए, बहुत कंट्रोलिंग पावर चाहिए। मन है आत्मा की शक्ति, हमारी गुलजार दादी कहती थी, तुम कहते तो सभी हो ये मन मेरा मेरा मन है, तो जब मेरा है तो मेरे को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हो, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मेरे हैं, तो हमारे अधिकार में है, हमारे अधीन रहते हैं, लेकिन मन क्यों चंचल हो जाता है, इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, इस पर अटेंशन दो। तो पहले संकल्पों को मर्यादा के अंदर रखना, ऐसे नहीं जो आया, जो देखा, जो किसी ने कह दिया, बता दिया, सुना दिया, उसी पर ही संकल्प चलना शुरू हो जाए, इस पर हमारा बहुत कंट्रोल चाहिए। ये मर्यादा है कि जो काम की बातें नहीं हैं, जो मेरी इस ब्राह्मण जीवन में उन्नति के अनुकूल नहीं है, ऐसी बातों को सुनते भी नहीं सुनना है, देखते भी नहीं देखना, उस पर कोई विचार चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपनी उन्नति ब्राह्मण जीवन में किसी को करनी है तो अपने संकल्पों पर बहुत पहरा चाहिए, नहीं तो जो आता सोचते, कईयों को तो सोचने की बीमारी हो गई है, सोचते रहते हैं, जो देखते सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, किसने किया, कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, इन प्रश्नों की क्यों लग जाती है। और जब वो क्यों लग जाती है तो आप सब अनुभवी हो, जिसके बहुत संकल्प चलने लगते हैं उसको ही तनाव पैदा होता है, उसकी ही नींद पिटती है, उसका ही बीपी बढ़ता है, उसको ही बीमारियां होती हैं। और जो बहुत सरल, भोले, सच्चे, बहुत कम सोचते हैं, ऐसे हमारे यज्ञ में उदाहरण हुए हैं ना, देखा है ना, हमारी गुलजार दादी को देखा, हमारी शांतामणी दादी को देखा, और कई दादियां ऐसी स्थिति बना करके सोचती ही नहीं थी, ऐसे जैसे सब अच्छा है, सब अच्छा है, और लास्ट में जानकी दादी जी ने हम सबको यही मंत्र पढ़ाना शुरू कर दिया, डोंट थिंक। हम हंसते थे, कहते दादी ऐसा कैसे हो सकता, संकल्प तो चलेगा, कहती थी डोंट थिंक, जो काम की बातें नहीं सोचनी है नहीं सोचो, सब अच्छा होगा, बाबा बैठा है, सब ठीक हो, सब ठीक होगा। तो ये मर्यादाएं हैं संकल्प के लिए, और जिस आत्मा ने संकल्प को अपने कंट्रोल में कर लिया, उसकी जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं, वृत्तियां बहुत चंचल हैं, वृत्तियों को अनासक्त बनाना, वृत्तियों को एकाग्र कर लेना, वृत्तियों को उपराम रखना, वृत्तियां बहुत सूक्ष्म हैं, वृत्तियां केवल व्रत लेने से चेंज होती हैं। वृत्तियों के लिए बहुत सारे मर्यादाएं बाबा ने बताई हैं, बच्चे ये जो सूक्ष्म वृत्तियां बहुत चंचल हैं, अंदर अंदर चलती हैं, संकल्प एक चला और वृत्तियां कहीं दूसरी जगह, और उसको अंदर समाया हुआ है, और जब कोई बात सामने आती है तो उसके पथ पे संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए वृत्तियों पर बहुत ध्यान चाहिए, अटेंशन चाहिए, नहीं तो हम सोच भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, और वृत्तियां अपना अंदर अंदर काम करती रहती है। इसलिए सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने के लिए दृढ़ता का संकल्प हो। बाबा ने मुझे कहा है बच्चे एक वृत्ता बनो, एक को वृत्ति में रखो, एक बाबा दूसरा न कोई, ये व्रत ले लो, आपकी वृत्तियां जो चंचल हैं, देह को देखने, देह के बारे में सोचने, देह पर आकर्षित होने की, वो वृत्तियां आपकी बिल्कुल प्योर, निर्मल, स्वच्छ बन जाएंगे, व्रत लेना होगा। तो वृत्तियों के लिए भी बाबा ने बहुत सी मर्यादाएं हमें बताई हैं। और वृत्तियों पर जिसका ध्यान है वह अनासक्त है, उपराम है, बेहद की वैराग्य वृत्ति है। कोई चीज संसार की आकर्षित नहीं करती जिसने वृत्तियों पर ध्यान दिया है, नहीं तो वृत्तियां कहीं ना कहीं कोई चीज को देख करके प्रभावित हो जाती हैं, आसक्त हो जाती हैं। इसलिए सूक्ष्म वृत्तियों पर अटेंशन देंगे, पहरा देंगे, व्रत लेंगे, तो इस मर्यादा को, वृत्ति की मर्यादा को हम पालन कर सकेंगे। अब इसके साथ बहुत सूक्ष्म और दृष्टि का प्रभाव पड़ता है। कैसे? दृष्टि के लिए मर्यादाएं हैं। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो बाबा ने कितनी बार कहा है, बच्चे सबसे अधिक धोखा देने वाली आंखें ही हैं। दृष्टि से देखते हैं, अंदर अंदर संकल्प चलते हैं, फिर बोल निकल जाते हैं, वृत्तियों में चला जाता है। दृष्टि का ऑपरेशन मैं समझता हूँ बाबा आते ही पहले आई हॉस्पिटल खोल देता है, सबकी आंखों का ऑपरेशन कर देता है। जो क्रिमिनल आई है, जो देह को देखने की, देह के बारे में सोचने की, दैहिक दृष्टि रखने की, उस आंख का ऑपरेशन बाबा करके त्रिनेत्री बना देता है और कहता है बच्चे आत्मा को देखने का अभ्यास करो। देखना ही है तो चमकती हुई मणि को देखो, हीरे को देखो, इस सांप को नहीं देखो। कितना अच्छी बात मर्यादा की बाबा ने बताई है। दृष्टि के लिए मर्यादाएं हैं, दृष्टि बड़ी निर्मल हो, बड़ी शुद्ध हो, बहुत निस्वार्थ वाली, बहुत जिसके प्रति हो निर्दोष वृत्ति, निर्दोष दृष्टि। कई लोगों की दोष, कमी, कमजोरियां हम देखते हैं और देखते ही उसके प्रति हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के विचार चलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है निर्दोष दृष्टि रखो, निस्वार्थ दृष्टि रखो। जब दृष्टि की मर्यादाओं को हम समझते हैं तो वही आत्मा, कितनी महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, हीरो पारधारी आत्मा, जो आत्माएं इस नाटक में अंदर खेल खेल रही हैं वो सब बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत महान है। हर एक एक्टर अपना अपना बहुत अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले कर रहा है, ये समझ बाबा ने दी है। इसलिए किसी की कमियां कमजोरियां हमारे चित्त पर न बैठ जाएं, नोट न हो जाएं, इसके लिए दृष्टि की मर्यादाएं हैं। दृष्टि बड़ी पवित्र हो, शुद्ध हो, आत्मिक दृष्टि हो, आत्मा को देखने का अभ्यास हो। फिर बोल के लिए मर्यादाएं। आज जितने हमारे संगठन टूट जाते हैं, दो बहनें, दो भाई, एक परिवार छोटा सा साथ नहीं रह पाता, उसका मूल कारण बोल पर कंट्रोल नहीं। आप सब ध्यान देंगे अगर इस बात पर, बाबा ने कई मुरलियां ऐसी चलाई हैं, बच्चे बोल बड़े अनमोल हैं, वाणी से वही निकलना चाहिए जिससे किसी आत्मा का कल्याण हो जाए। ऐसे बोल नहीं बोल दो जो उसके दिल में तीर लग जाए, घायल कर दो। हम संगठन में रहते हैं, भाई बहनें साथ रहते हैं, परिवार हैं, लेकिन अगर कोई एक छोटा सा ऐसा शब्द बोल दिया जो किसी को फील हो गया, जो जिस किसी को दुख की महसूसता हुई, किसी ने अपमान महसूस किया, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा ब्राह्मण जीवन में पाप हो जाता है, इससे बद्दुआएं मिलती हैं। मैं अपने इस संगठन में अपने साथियों के बीच में भी बहुत ध्यान रखता हूं, कोई भी ऐसा बोल कभी न निकले जो उनके दिल को चोट लगे। बहुत अटेंशन चाहिए इस पर, क्योंकि हर एक अपनी अपनी योग्यता अनुसार, अपनी बुद्धि की डेवलप अनुसार कार्य कर सकता है। अगर उसने गलत कर दिया, कुछ ठीक नहीं कर पाया, जैसी मेरी अपेक्षाएं ऐसा नहीं किया और हमने उसको गलत जवाब दे दिया, जोश में बोल दिया, कुछ ऐसे वचन बोल दिए। कई बार बाबा कहते हैं आप बच्चों के बोल श्रापित करने वाले बोल न हो, आपके बोल किसी का कल्याण करने वाले, उसके लिए आशीर्वाद बन जाएं। इतना अटेंशन देना क्योंकि आप सब मास्टर सतगुरु हो, इतना अटेंशन दो। बोलना है जरूर बोलो, बाबा कहता है बाजा है बजाओ, लेकिन क्या बोलना है, कितना बोलना है, उसको बहुत ध्यान दो। यहां तक बाबा कहते हैं बच्चे अगर शाम के समय अपने बोल गिनती करना चाहो कि सुबह से रात तक मैंने कितना बोला, क्या बोला, उसको आप नजर से देख सको, समझ सको कि कितने बोल मेरे साधारण रहे, कितने बोल युक्ति युक्त रहे, कितने बोल किसी आत्मा के कल्याण के प्रति रहे। तो जिसने अपने इस बोल पर कंट्रोल किया, बोल की मर्यादा को जिसने यथार्थ समझा है, मर्यादा यही है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सम्मानजनक बोल बोलो, क्योंकि बोल से ही उस आत्मा का भला भी कर सकते हो और बोल से उसको गिरा भी सकते हो। तो हम सब बाबा के बच्चों को वर्तमान समय अपने इस ब्राह्मण परिवार को एकजुट रखने के लिए बहुत आवश्यक है अपने बोल की मर्यादा को समझना। हम कभी भी ऐसे वैसे बोल, भले कोई गलत कर रहा है, हुआ है गलत, बाबा कहता है अगर किसी को कोई इशारा भी देना है, अभी 3-4 दिन से आप वरदान बाबा का सुन रहे हो, बच्चे क्षमा करना भी शिक्षा देना है। शिक्षाएं देना बहुत आ गया है, हम शिक्षाएं तो दे देते हैं लेकिन आजकल शिक्षाएं कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए बाबा कहते क्षमा कर दो, वो क्षमा ही उसके लिए शिक्षा हो जाएगी। क्षमा करने के लिए बहुत बड़ी दिल चाहिए, कोई गलती करके आए, कोई श्रीमत का उल्लंघन कर दे, कोई हमारे अनुसार हमारी अपेक्षाओं के अनुसार उल्टा कर रहा हो, उसको क्षमा करने कहेंगे तुम निकल जाए यहां से, कैसे कैसे कटु वचन बोल देते हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें रिपोर्ट आती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे समय पर जब अंतिम समय के समीप हो, कोई भी आत्मा भूल चूक से भी बद्दुआ न दे, ध्यान देना, नहीं तो अंत समय में वही बद्दुआएं आपको यमरूद के रूप में सामने आएंगी, काले काले रूप में, भयानक रूप में डराएंगी। ये कोई यमरूद दूसरे नहीं है, ये हमारे किए हुए गलत कर्म, गलत बोल, गलत व्यवहार वही अंत समय में डराते हैं आकर के। इसलिए इसके लिए बहुत अटेंशन, मर्यादा युक्त बोलो, बस जो बोलना है, जो यथार्थ है, युक्ति युक्त है, दूसरी आत्माओं के कल्याण के लिए है, उसके उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए है। आज बाबा कितना हम बच्चों को बोला है, लेकिन एक भी बोल मेरे को तो याद है, क्योंकि शुरू से लेकर के 73 से लेकर के 2017 तक जो बाबा का व्यक्त पाठ चला है पूरा, चाहे वो 10 घंटा, 20 घंटा, 15 घंटा, जो बाबा शाम को आए हैं, सुबह 8-9 बजे तक बैठे हैं, मैंने 1 मिनट भी बाबा के पार्ट को मिस नहीं किया। जो कुछ बोला है इन्हीं उंगलियों ने लिखा है, इसलिए मैंने बाबा को देखा है कि कैसे बाबा क्षमा का सागर बन करके, दयालु, कृपालु, रहम दिल बन करके बैठते हैं, आते हैं, पूरी बायोग्राफी बच्चों की जानते हैं। ऐसा नहीं जानते हैं, हमें ही पता है, बाबा को नहीं पता है, हम भी जानते हैं कि ये व्यक्ति जो बाबा के सामने आया है, इसकी ये कंप्लेन है, ये इसने गलतियां की हैं, लेकिन बाबा के सामने अगर बाबा का बच्चा आ गया, बाबा उसको कितना प्यार करता है, उसको दृष्टि देता है, उसके पास सम्मानजनक बोल बोलता है, कैसे इसका भला हो, कैसे आगे बढ़ जाए, अपनी भूलों को भूल जाए, उसके लिए बाबा उसको कितनी शकास देता है, कितना स्नेह देता है, कितना सम्मान देता है, मैंने इन आंखों से देखा है। बहुत प्यार करके उसको इतना सम्मान दिला देता है कि अरे आप कौन हो, फिर ऐसे शिक्षा बताता नहीं, ये बातें तो बहुत छोटी छोटी हैं, इनको छोड़ दो, इनको भूल जाओ। शिक्षा देने का स्वरूप बाबा का देखो, है बोल ही, बोल द्वारा ही शिक्षा मिल रही है, लेकिन पहले उसकी सम्मान को जागृत करके फिर किसी बात को कहना। कहते हैं अगर धरती पर बीज भी डालना होता है तो पहले हल चलाना पड़ता है, ऐसे ही डाल के आ गए तो बीज चिड़िया खाएंगी या पानी बहाएगा या धूप में सूख जाएगा, हल चलाओ फिर बीज डालो। अगर किसी को कोई शिक्षा देनी है, कोई बात कहनी है, उसको सुधारना है, तो ऐसे नहीं डायरेक्ट ठोक दिया, तुम ऐसा है, तुम ये गलती करता है। उसके सम्मान को स्मृति में दिलाओ, उसको आगे बढ़ाओ, फिर उसको कोई बात कहनी है तो कह दो, इशारे में कह दो, प्यार से कह दो, उस समझ सके, समा सके उस बात को, उसके लिए उसकी विशेषताओं का वर्णन करके फिर बात। तो बात करने का जो बाबा ने हमें मर्यादाएं बोल के लिए दी हैं, बहुत गहरी हैं, उस पर हम सबका अटेंशन चाहिए। वर्तमान समय बोल बड़े अनमोल हैं, वही बोले जाएं जो हमारे और दूसरों के लिए प्रगति वाले, उन्नति वाले हों। कर्म के लिए मर्यादाएं हैं, इस समय कर्म की छूट बाबा ने दी है, और कर्म के बिना तो हम रह भी नहीं सकते, सेवाओं के बिना हम नहीं रह सकते, लेकिन कर्म करते भी कर्तापन का भान ना है, कराने वाला करा रहा है। इतना निमित्त भाव कर्म में आ जाए, जो आज बाबा के वरदान में था, जितना निमित्त भाव आता है उतनी आत्मा निर्माण चित बन जाती है, नम्रचित बन जाती है। कर्म किया, सेवाएं की, अहंकार बढ़ गया कि मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत योग्य हूं, मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मुझे बहुत अच्छी सेवा में सफलता मिलती है। कई बार ये अहम भाव जो है वो कर्म के अंदर, श्रेष्ठ कर्म में घुन का काम करता है, किए हुए श्रेष्ठ कर्मों को अंदर अंदर खोखला बना देता है। इस बात पर अगर किसी ब्राह्मण बच्चे ने ध्यान दिया है कि कराने वाला बच्चों से हर कार्य, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य कराने वाला बाबा हमारे साथ है, वो करा रहा है, हम सब बाबा की कठपुतलियां हैं, बाबा हमें नचा रहा है। कराने वाला जब करा रहा है तो मैंने जो कर्म कर लिए किए हैं उसका अभिमान क्यों, उसका दिखावा क्यों, उसका उल्टा नशा क्यों, कराने वाले ने करा लिया, शुक्रिया बाबा आपका। जरा भी अगर कोई अपनी विशेषता का हम आ गया तो बाबा कहता है मेरी विशेषता कहना ही मैलापन है, कराने वाले ने कराया, बाबा आपने करा लिया, समर्पित करो अपने आप, किए हुए कर्म को भी समर्पित कर दो, शुक्रिया बाबा आपका जो इस कार्य के लिए निमित्त बना दिया। और जब निमित्त भाव आता है तो उसमें नम्रता आ जाती है, अहम भाव आता ही नहीं है, कभी दिखावा होता ही नहीं है, कभी किसको बोलेंगे कि मैं ये हूं, अरे कराने वाला करा रहा है, मैंने क्या किया। तो करावन हार की स्मृति रहना ये कर्म की मर्यादा है। एक करावनहार बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बना करके श्रेष्ठ कर्म करा रहा है, दूसरा मैं आत्मा इन कर्मिंद्रियों से कराने वाली करावनहार बन करके कर्म कर रही हूं, मैं अलग हूं, ये अलग है, ये अभ्यास है। और ये अभ्यास जिसने किया है, कर्म बहुत अच्छे होते हैं, बाबा कहता है कभी भी कर्म किसी को थकाता नहीं है। अगर कोई सेवाओं में थकावट की अनुभूति हो रही है तो वास्तव में वो सेवा यथार्थ सेवा नहीं है, थकावट, सेवा में थकावट, जबकि सेवा से दुआएं मिलती हैं, सेवा से पुण्य कर्म जमा होते हैं, फिर उसमें थकावट की अनुभूति क्यों। थकावट होती है आपसी टकराव के कारण, स्वार्थ भावनाओं के कारण, कोई न कोई कामनाओं के कारण, जब वो पूर्ति नहीं होती है तब उस सेवा में थकावट होती है। इसलिए जो कोई बाबा ने हमें सेवाएं दी हैं, कराने वाला करा रहा है, कितना भी काम करो, कितनी भी सेवाएं करो, मैं इसमें थक गया हूं, मैं डिस्टर्ब हो गया हूं, सेवाएं डिस्टर्ब नहीं करती हैं, वो तो हमारी उन्नति का साधन है, वो तो हमारे भाग्य बनाने का आधार है। लेकिन जब आपसी संस्कारों का सेवाओं में टकराव हो जाता है तो थकावट होती है, फिर कहते छोड़ो सेवाएं, क्या जरूरत है, क्यों ये सब करना है, वहां थक जाती है आत्मा। इसलिए हम सब सेवाएं करें, कर्म में आए, संबंध संपर्क में आए, लेकिन मर्यादा को ध्यान पर रख करके। मर्यादा बाबा ने हमें बताई है कि बच्चे कर्तापन का भान ना आए। दादी जी का एक शब्द सुनाता हूं, गुलजार दादी हम सबको जब क्लास कराती थी बहुत प्यार से एक शब्द कहती थी, खास भाइयों के लिए कहते थे, तुम लोग अपने विवेक को सरेंडर करो, विवेक को सरेंडर करो, ऐसे कहते थे। ये जो विवेक चलाते हो ना, मेरा विवेक, मेरी बुद्धि, ये अहंकार है, कहां से विवेक तुम्हारा आ गया? बाबा कराने वाला, बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है जिसने हमें इतनी बुद्धि दी है, समझ दी है। मेरा विवेक जहां कहेंगे वहां उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, मैंपन आ जाएगा, और मैंपन दो चीजों की निशानी प्रकट कर देता है। अगर जरा भी किसी में मैं होगा, विवेक का अभिमान होगा, उसको जरा भी कोई इंसल्ट कर दे, अपमान कर दे, न भी करे, लेकिन उसको सीट न दी जाए, उसको स्थान न दिया जाए, वो बहुत तुरंत फीलिंग में आ जाएगा, अपमान महसूस करेगा कि मैं इतना सब करता हूं, इतनी सेवाएं करता हूं, इतना अच्छा सहयोग देता हूं, लेकिन मेरी यहां कदर ही नहीं है। एक सेकेंड में मूड खराब हो जाना, ये अभिमान की निशानी है। और कई बाबा के बच्चे अभी तक भी मूडी हैं, बड़ी जल्दी एकदम जैसे मूड बदल लेते हैं। अभी अभी बड़ी उमंग उत्साह की मूड है, खुशी की मूड है, और अभी कोई बात अच्छी नहीं लगी, अभी कोई ने मेरी कुछ बात कट कर दी, मेरे प्लान को कट कर दिया, मेरे कोई सेवाओं को कट कर दिया, इज्जत नहीं दी, उसी समय एकदम मूड खराब हो गया। और जब मूड खराब होता है तो आप समझते हो क्या क्या होता है, सारा संगठन टूट जाता है, सेवाएं रुक जाती हैं, लोग आपस में अपसेट हो जाते हैं, योग टूट जाता है। तो ध्यान देना, कभी भी अभिमान के निशानियां अपमान के रूप में हमारे मूड को खराब ना कर दे। और जिसमें अभिमान होता है उसके अंदर क्रोध भी बहुत आता है, अंदर अंदर जैसा मैं चाहता हूं ऐसा ही होना चाहिए, और नहीं हुआ तो गुस्सा आएगा, कुछ न कुछ अपशब्द निकलेंगे, कुछ न कुछ बोलेंगे। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे ऐसी अपेक्षाएं नहीं रखो, क्योंकि सब नंबर वार आत्माएं हैं, सब एक जैसे नहीं बनेंगी, एक जैसा कार्य नहीं करेंगी, समझ मिली है, समझदार बने हैं। इस नाटक के अंदर एक का पार्ट दूसरे के पार्ट से नहीं मिल सकता। कितना वंडरफुल ज्ञान बाबा ने दिया है, समझ दी है, ज्ञान माना क्या, समझ दी है, और फिर भी हम अपेक्षा रखते हैं जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं कहता हूं ऐसा इसको करना चाहिए। अब उसके पास शक्ति नहीं है, उसके पास योग्यता नहीं है, कैसे करेगा वो, और नहीं करता है तो उस पर नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, अपशब्द बोलते, संबंध संपर्क वहां पर टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसलिए मर्यादा बाबा हमें कहता है, संबंध संपर्क में आते हुए हर आत्मा की विशेषता को देखो, और एक जैसी विशेषता उसमें नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ सात भाई हैं काम करने वाले डिपार्टमेंट में, शांतिवन में, ज्ञान सरोवर में, पांडव भवन में, सात आठ भाई काम करते हैं, हर सेवा में सहयोगी हैं, लेकिन एक की विशेषता दूसरे की विशेषता से नहीं मिलती। अगर एक को एक काम बताया दूसरा बता दो तो वो नहीं कर पाता है। वो सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कोई है हमारे पास स्टेशनरी का बहुत बड़ा स्टॉक है, इतना प्यार से एक संभालता है, उसको ऐसी आदत है, कौन सी चीज कब गई, किसने ली, कहाँ गई, कितनी कम पड़ी, कितनी मंगानी है, तीनों जगह की स्टेशनरी का सारा रजिस्टर कभी भी पूछ दो, एकदम एक्यूरेट। कभी भी आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कितना है या नहीं है, या अचानक कैसे कम पड़ गया। इतनी उसके अंदर योग्यता है, विशेषता है। अब उसको अगर हम कहें ये मशीन खराब हो गई थोड़ा इसको ठीक कर दो, करेगा क्या, रुक नहीं आता। तो हरेक की विशेषता एक है, जो सारी मशीनरी, कंप्यूटर हो, फोटोकॉपी हो, जो काम हो, टूट फूट गया हो, सब ठीक कर देगा, उसके पास वो योग्यताएं हैं, उसकी स्टडी है उसके ऊपर। अब उसको अगर स्टेशनरी काम दो, कहेगा ये मेरे से नहीं होता। कल मैं खेती पर गया, वहां पर हमारी योग्य खेती जो चल रही है, तो कुछ माताएं घास निकाल रही थी और कुछ भाई घास निकाल रहे थे। माताएं जब घास निकालने वाली घास निकाले थे तो बहुत आगे तक निकल गई, 2-3 घंटे में वो बहुत सारे काम कर लिया, और जो भाई थे वो बहुत पीछे रह गए। तो एक भाई जो संभालने वाला कहता है, इनको हटा दो कुमारों, ये भाइयों को यहां से, ये काम ही नहीं करते, काम चोर हैं। मैं हंसने लगा, हमने कहा काम चोर नहीं है ये, इनके अंदर आप इनको काम कौन से दे रहे हो, ये घास निकालने का काम, ये चलने का बैठने का काम माताएं बहुत प्यार से करती हैं, ये बहुत आराम से करती हैं, उनको अनुभव है उसका। और ये भाइयों को आप अभी भाग दौड़ का काम दे दो, कोई तोड़ फोड़ का कर दो, यहां पर पाइप लगाना, यहां ये करना, यहां ये करना, वो माताएं नहीं कर सकती हैं। उनकी वो योग्यता है, जो योग्यता के अनुसार आपने काम नहीं दिया और फिर उन पर करे गुस्सा कर रहे हो कि ठीक नहीं करते, ये ऐसे करते हैं, सोचते हैं, सोचते नहीं है, उनकी योग्यताएं हैं। जो योग्यता जिसकी है, बाबा ने बहुत बड़ी कमाल की है, इतने बड़े यज्ञ में जिस बच्चे की जो विशेषता है उसी विशेषता की सेवा दी है उसको। कैसे मिली है, कहां से मिली है, कोई योग्यताएं लेकर के थोड़ी आए, लेकिन बाबा ने इन बच्चों की विशेषताओं को देखा, उसी विशेषता के प्रमाण यज्ञ की सेवा के निमित्त बनाया, और इतनी परफेक्शन, इतना अच्छा सब कर रहे हैं, जो लोग देखते हैं कहते हैं अरे ये तो लाखों रुपया दे करके अगर किसी नौकर से कराया जाए तो नहीं करेगा, जितना ये समर्पित भाई लोग कितना प्यार से कर रहे हैं। योग्यताएं उनकी विशेषताएं हैं, और विशेषता देख करके अगर हम संबंध संपर्क में आते हैं तो वो हमारे सहयोगी बनते हैं, कार्य में सफलता मिलती है। और ऐसे ही किसी को बोला जाए ये तुम कर लो, अब किसी ने किसी कभी माइक पर भाषण नहीं किया है उसको माइक पर खड़ा कर दो तो कांपने लगेगा, ऐसे ऐसे कहां से करेगा, और कोई करने वाला है आप उसको कितनी बड़ी सभा हो दे दो कर लेगा वो। तो बाबा ने हम बच्चों की विशेषताओं को देखा है, हमारे संबंध संपर्क में जो आत्माएं आ रही हैं, आप थोड़ा सा विशाल बुद्धि बन के परखने की शक्ति धारण करके उसकी क्या विशेषता है, उसी विशेषता के अनुसार उसको सेवा दे दो, देखो कितना परफेक्ट करेगा, कभी भी आपकी अपेक्षाओं में कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। इसलिए हम सबको बाबा ने दृष्टि की, वृत्ति की, संकल्प की, बोल की, कर्म की, संबंध की, संपर्क की, सब प्रकार की मर्यादाएं बताई हैं, और जिस आत्मा ने इन मर्यादाओं को सहज रीति से अपने जीवन में पालन किया, समझा है, दृढ़ता के साथ उसको पालन कर रहा है, वो मर्यादाएं उसके लिए इसी समय रक्षा कवच है, क्योंकि व्यर्थ से वो मुक्त रहता है, माया से मुक्त रहता है, रक्षा उनसे होती है। इस वायुमंडल में जितनी नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी से अपने को बचाना, यही है सुरक्षा, इसके लिए हमें कवच तैयार करना है। आजकल वर्तमान समय की जो माया है, तंत्र मंत्र जंत्र तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष के कारण ये बहुत जबरदस्त खेल की रीति से माया चल रही है, और इसमें सुरक्षा के लिए हम सबको बहुत ध्यान देना है। पहले तो हमारे जो नियम बने हैं, बाबा ने जो अमृत वेले से रात तक दिनचर्या के नियम बनाए हैं, खान पान के नियम बनाए हैं, संघ के नियम बनाए हैं, उन नियमों को दृढ़ता से पालन करो, और मर्यादाओं का पालन करोगे तो ये मर्यादाएं आपके लिए इतना सुंदर कवच बन जाएंगी, कोई भी अशुद्ध आत्मा, कोई का नेगेटिव संकल्प इस मर्यादा की रेखा को, इस बाउंड्री को क्रॉस करके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सबसे पहली अमृत वेले उठते ही मैं एक बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा हूं, मैं बहुत महान और श्रेष्ठ आत्मा हूं, इस संकल्प से एक बहुत सुंदर पवित्रता का क्राउन पहन लो। ये लाइट का घेरा, ये लाइट का सूक्ष्म शरीर अगर आपने अमृत वेले पहन लिया है, धारण कर लिया है, तो कितना भी कोई गलत सोचे आपके लिए, कुछ गलत करना चाहे, आपके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा, वो शक्तियां उसकी वापस चली जाएंगे। लेकिन वो पवित्रता का कवच जिसने पहना है, बहुत शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प का कवच पहना है, उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होता। जिसने अपनी मर्यादाओं के अंदर अपने खान पान पर ध्यान दिया है, मुझे किसी के हाथ का नहीं खाना है, कुछ भी हो जाए, केवल पवित्र आत्माओं के हाथ का और अपने हाथ का बनाया हुआ शुद्ध भोजन, भगवान को भोग लगाया हुआ भोजन खाना है। आप अगर इस मर्यादा को दृढ़ता से पालन कर लो, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन खा लिया, सब खा रहे हैं, क्या कहेंगे? अनटच है, अनटच। आजकल बहुत चीजें निकल गई। मैं एक दिन एक फैक्ट्री में गया, रविंद्र भाई, एक फैक्ट्री में मैं गया, अनटच फैक्ट्री बन रही थी वहां पर, अंगूर की प्रोसेस हो रही थी, फलों की प्रोसेस हो रही थी, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो जब मैं गया तो एक बहन मेरे को गाइड कर रही थी। वो अंगूर का तो सीजन पूरा हो गया था, लेकिन पपीते की पैकिंग हो रही थी, अनटच पपीता, जो कुछ समय फ्रीजर में रख के 2 साल तक खाया जा सकता है। तो मुझे उसको दिखाने ले गए, मैं ऊपर से ही गया, देख रहा था, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। जब बाहर आया, बहन जी से मैंने पूछा, वो जो दिखाने वाले थे, मैंने, बहन ये सब अनटच है? बोलिया अनटच है। मेरे को एक पैकेट दिया, तो मैंने उसको बहुत हंसते हुए कहा, देख जितने मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ, करीब 25-30 माताएं कलर ड्रेस में थी, और पपीते का बीज ऐसे उंगलियों से बाहर निकाल रहे थे, चाकू भी नहीं था हाथ में, कट होता था मशीन से, और मशीन के बाद उसमें जो बीज होते हैं उनको निकालने के लिए वो माताएं हाथ से ऐसे ऐसे, जो बहुत खराब लग रहा था देखने से। इसको अनटच कहते हो आप? कहते और कैसे करेंगे, बीज तो निकालना, हमने बीज निकालने की विधि होती है। तो हम कहते तो हैं ये अनटच है, लेकिन कहीं ना कहीं तो टच हो रहा है ना, इसलिए सब ध्यान देना। शुद्धता तो शुद्धता है, शुद्धता हमारे विचारों में बहुत आवश्यक है, चाहे वो खान पान की शुद्धता है, चाहे संघ की शुद्धता है, चाहे पढ़ाई की शुद्धता है। पढ़ाई के भी बहुत कायदे हैं, नियम है, क्या पढ़ रहे हैं हम सब, क्या हम देख रहे हैं। आज टीवी चल रही है, यूट्यूब देखते हैं, अच्छी बात है, क्लासेज मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर गलत बटन दबा दिया, नहीं दबाया, उसके अंदर कई गलत चीजें आ रही हैं, उसको आप इंटरेस्ट से देख रहे हैं, आपके विचार अशुद्ध हो जाएंगे। कितना भी आप पवित्र हो, कितना भी आपने प्रतिज्ञा की हो, लेकिन दृश्य श्रव्य पढ़ाई ये हमारे विचारों पर प्रभाव डालती है। मर्यादाएं हैं, नहीं देखना है तो नहीं देखना है, कुछ भी हो जाए। आज मोबाइल हाथ में, इसका मतलब ये थोड़ी है जो आया वो देखते रहो, देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं रात को 9 बजे 10 11 12 बजे तक, और कहते हैं अमृत वेले मेरे को नींद आती है, मेरा योग नहीं लगता है। अब रात को कर क्या रहे हो आप? जो बाबा ने कहा है, हमारी दादियां कहती थी, 10 तो बस, 10 के बाद आप बिस्तर पर नहीं, जागृत नहीं रहो, सो जाओ जाके। हम 11 12 1 बजे तक अंदर अंदर व्हाट्सएप देख रहे हैं, इधर उधर चिट चैट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, छिप छिप करके मोबाइल यूज कर रहे हैं। विचार शुद्ध रहेंगे? ये मर्यादा नहीं है क्या? हम सबको ऐसी मर्यादा में बहुत दृढ़ रहना है। अगर हमें संपूर्ण पावन बन करके बाबा के साथ चलना है तो नियम माना नियम, मर्यादा है माना मर्यादा है। हमें नहीं देखना है तो नहीं देखना है, संकल्प कर लो, क्या इसमें जाता है, क्या नुकसान हो जाएगा, आपकी एनर्जी बचेगी, आपकी आंखें ठीक रहेंगी, आपका पैसा भी बचेगा, आपका योग भी ठीक लगेगा। लेकिन ठीक है, सब देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। इसलिए अपने समय को सफल करो, अपनी शक्तियों को सफल करो। जो बातें मेरे मन बुद्धि को, विचारों को दूषित करने वाली हैं, उन बातों पर ब्रेक दे दो। मुझे बाबा ने मना किया है, ये मर्यादा नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन की अगर संपूर्ण मर्यादाओं का कोई पालन करता है तो माया की कोई भी शक्ति उस पर वार नहीं कर सकती। अगर वार कर रही है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई न कोई अंगूठा भी मर्यादा की लकीर से आपने बाहर निकाला है। अगर आप चेक करोगे तो पता चल जाएगा कहां से संकल्प में, बोल में, कर्म में, दृष्टिवृत्ति में किस मर्यादा का सूक्ष्म उल्लंघन है। उसको हम सब दृढ़ता से पालन करें, और पालन करके प्रतिज्ञा के रूप में करें, तो आप देखेंगे यही हमारे ब्राह्मण जीवन का सुरक्षा कवच है। कैसा भी नेगेटिव वातावरण हो, कैसे संग में आप चले जाओ, कोई का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ सकता, कैसा भी नेगेटिव वातावरण हो। कैसे भी लोग अशुद्ध हों, कहीं पर भी आप चले जाओ। मैं एक जगह गया था, बोला यहाँ पर बहुत इविल स्पिरिट्स का वार होता है, ऐसा होता है ऐसा होता है, आप क्यों वहां जा रहे हो? मुझे कुछ नहीं होगा, ये नेगेटिव संकल्प मुझे नहीं दो, हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे साथ पवित्रता का ओरा है, रक्षा कवच साथ है, कोई भी शक्तियां मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसलिए बहुत निर्भय बन जाते, निश्चिंत हो जाते हैं अगर हमने संपूर्ण अपने नियमों पर पालन किया तो। अगर हम जरा भी ढीले हैं, कोई भी कामनाएं हैं, कोई भी इच्छाएं हैं, ये हमारे ये संकल्प पूरा कर देंगे, ये हमारी मनोकामनाएं पूरा कर देंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, कई स्थान ऐसे होते हैं, मंदिरों में जाते हो, कोई तीर्थों पर जाते हो, कई बड़े सिद्ध पीठ होते हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं, और आप भी कोई सूक्ष्म कामना लेकर के जाते हो, तो बाबा बड़ा अच्छा शब्द देते हैं, जहां कामनाएं हैं वहां सामना नहीं किया जा सकता, कुछ भी आपके ऊपर हो सकता है। किस लिए कामना रख रहे हो? बाबा ने सब कुछ दिया है, सब प्राप्तियां कराई हैं, अखुट दिया है, क्या चाहिए? जिसकी कामना लेकर के हम किसी मंदिर में या किसी पुजारी के पास, किसी संत के पास जाएं, बाबा ने अपने बच्चों को सब कुछ दिया है, गति सदगति का मार्ग दिखा दिया है, हम उस मार्ग पर चलने वाले, हमें क्या चाहिए? जब आत्मा की स्थिति इच्छा मात्रम विद्या की बन जाती है, तब वो इन सब बातों को क्रॉस कर सकती है, और यही स्थिति उसके लिए रक्षा कवच बनती है। ठीक है, ओके, ओम शांति। चलो 5 मिनट के लिए सब शरीर के भान से न्यारे इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान, मैं एक चैतन्य सितारा, लाइट और माइट से संपन्न इस भ्रकुटी आसन पर चमक रहा हूं, और बाबा की दिव्य शक्तियां इस हीरे की चमक को बढ़ा रही।